दीवा प्रार्थना से मिलने के लिए ऑफिस आई हुई थी, क्योंकि उसी ने उसे बुलाया था। प्रार्थना को दीवा के डेट के बारे में पता चल गया था कि वो बहुत खराब गई थी। ऊपर से एक अनजान लड़के ने आकर उसे भाभी बुलाया था। जब वो दीवा से इस बारे में बात करने हॉस्पिटल पहुंची तो उसे पता चला कि दीवा हॉस्पिटल में रहती ही नहीं है। अपने सवालों के जवाब लेने के लिए प्रार्थना ने दीवा को ऑफिस में बुलाया था, लेकिन दीवा सच बताने के लिए तैयार नहीं थी। वो बार बार यही कह रही थी कि वो अपने कुलीग डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल के पास एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहती है। प्रार्थना का गुस्सा उसके बस के बाहर हो गया। उसने दीवा के गाल पर कसकर तमाचा लगाया। हालांकि थप्पड़ लगाने के बाद उसे खुद पर अफसोस हो रहा था। उसका हाथ कांपने लगा था। उसके चेहरे पर अफसोस के भाव थे। दीवा रोते हुए सुबक रही थी। कल रात आर्यांश ने भी उसके साथ बुरा बर्ताव किया था। सुबह भी उसने उसका गला पकड़ दिया था, और अब उसकी माँ उसके साथ ये सब कर रही थी। वो सब उसने अपनी फैमिली के लिए किया था। इसमें दीवा की क्या गलती थी, उसे समझ नहीं आ रहा था। दीवा अपने उधेड़बुन में खोई हुई थी। तभी उसके कानों में प्रार्थना की आवाज गूंजी। प्रार्थना ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, मैं सच का पता नहीं लगा सकती, लेकिन जिस दिन मुझे सच का पता चला उस दिन अपना जवाब भी तैयार कर लेना कि तुम्हें मुझे किस तरह सफाई देनी है। मुझे तुमसे ऐसे बिहेवियर की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम झूठ बोल रही हो। जाओ और जाकर सोचो कि तुमने कितनी बड़ी गड़बड़ की है, बट फॉर गॉड्स सेक तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। दीवा का हाथ उसके गाल पर था। प्रार्थना जिस तरह से व्यवहार कर रही थी उससे दीवा को बहुत अपमानित महसूस हो रहा था। ऊपर से उसने दीवा को निकाल भी दिया था। दीवा धीमे कदमों से बाहर आ रही थी। उसके आंखों में आंसू और चेहरे पर निशान देखकर बाकी लोगों को कुछ कुछ समझ आ रहा था, लेकिन दीवा को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो रोते हुए उसी हाल में बाहर आ रही थी। उसे कुछ होश नहीं था और वो इतने ट्रैफिक में खोई हुई हालत में चल रही थी। वो एक गाड़ी के नीचे आते आते बची थी। गाड़ी के ड्राइवर ने अपना मुंह बाहर निकाला और दीवा पर चिल्लाकर कहा, तुम्हें मरने के लिए मेरी भी गाड़ी मिली थी क्या, या फिर मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मुझे मुसीबत में डालना चाहती हो? मरना ही है तो किसी और गाड़ी के आगे जाकर मरो। दीवा ने लाल आंखों से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू देखकर ड्राइवर हैरान रह गया और आगे कुछ नहीं बोला। वो आगे कुछ और कहकर उस लड़की का दिल नहीं दुखाना चाहता था जो पहले से ही टूटी हुई थी। दीवा गाड़ी से तो बच गई थी, लेकिन आगे चलते हुए वो एक ट्रक के सामने पहुंच गई थी। वो लगभग उससे टकराने वाली थी कि किसी ने उसे ऐसे पकड़कर खींच लिया था। इसी के साथ दीवा को होश आया तो उसने देखा वो प्रियंक के बिल्कुल करीब थी। उसे अपने सामने देखकर दीवा थोड़ा घबरा गई। वो जल्दी से प्रियंक से दूर हो गई और अपने आंसू साफ करके नीचे देखने लगी। डॉक्टर गोयनका, हम एक बार फिर मिल रहे हैं, वो भी इस तरह रोड पर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपनी जान देने जा रही थी, प्रियंक ने हल्का मुस्कुराकर कहा। मैं ठीक हूँ, बस मेरा ध्यान नहीं था, थैंक्स मुझे बचाने के लिए, दीवा ने काफी फॉर्मली जवाब दिया। वो वहां से जाना चाहती थी। दीवा को ऐसा लग रहा था कि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही है। उसके चेहरे के भाव देखकर प्रियंक ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, डॉक्टर गोयनका, इस दुनिया में सभी लोग किसी न किसी से परेशान हैं। आप रोना चाहती हैं तो रो सकती हैं, लेकिन इस तरह अपनी जिंदगी का मजाक मत बनाइए। आपसे बेहतर एक इंसान की जिंदगी की कीमत कौन समझ सकता है? बहुत से लोग हॉस्पिटल में मरने की हालत में आते हैं जो जीना चाहते हैं, लेकिन उनकी किस्मत में मौत आती है। फिर सब कुछ जानते हुए आप अपनी जान क्यों लेना चाहती हैं, प्रियंक दीवा को समझा रहा था। उसकी बातें सुनकर दीवा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नजरें झुकाकर कहा, मुझे जाना होगा, मुझे देर हो रही है। ठीक है, फिर मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, ऐसी हालत में मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, आप अभी भी मुझे ठीक नहीं लग रही हैं, प्रियंक ने इंसानियत के नाते कहा। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी, दीवा ने जवाब दिया। वो प्रियंक से किसी तरह का एहसान नहीं लेना चाहती थी। उसे इस तरह टूटा हुआ देखकर न जाने क्यों प्रियंक को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कहा, सच में ठीक से जा पाऊंगी ना? हाँ, मैं कर लूंगी, दीवा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। तुम सच में बहुत जिद्दी हो, प्रियंक बोला। दीवा ने तुरंत खुद को संभाला और अपनी गाड़ी के पास पहुंची। हालांकि दीवा ने प्रियंक के साथ जाने से मना कर दिया था, लेकिन उसकी सिक्योरिटी के लिए प्रियंक उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। जब वो हॉस्पिटल सही तरीके से पहुंच गई तो वो भी वहां से चला गया। दीवा को छोड़ने के बाद प्रियंक वहां से सीधा कपूर इंटरनेशनल्स पहुंचा। वहां जाते ही वो आर्यांश के केबिन में आया और दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाओ, आर्यांश ने सख्त आवाज में कहा। प्रियंक मुस्कुराते हुए अंदर आया। उसने आर्यांश की तरफ देखा तो वो काफी सख्त लग रहा था। प्रियंक ने फिर हल्के मजाक में कहा, लिटिल ब्रदर, तुम तो कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहे हो। आर्यांश ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, वो अपने काम में लगा हुआ था। उसने बिना नजरें उठाए सख्त लहजे में कहा, मुझे सर कहो, यहां मैं तुम्हारा बॉस हूं। वो समझ सकता था कि प्रियंक यहां किसी अच्छे इरादे से तो आया नहीं था। ठीक है सर, लेकिन क्या मुझे बैठने की परमिशन मिलेगी, प्रियंक ने उसे परेशान करने के लिए कहा। आर्यांश ने अपनी फाइल साइड में रखी और प्रियंक की तरफ देखा। वो उठकर काउच की तरफ बढ़ने लगा। प्रियंक भी उसके पीछे आ रहा था, लेकिन वो आर्यांश से पहले ही बैठ गया, मानो वहां कोई कॉम्पिटिशन चल रहा हो कि जो पहले बैठेगा वो जीतेगा। हालांकि वो उम्र में उससे थोड़ा बड़ा था, लेकिन उसका ये बचकाना बर्ताव देखकर आर्यांश को मन ही मन हंसी आ रही थी। वो हमेशा उसके साथ कॉम्पीट करने की कोशिश करता, लेकिन कभी जीत नहीं पाता था। आज मैं यहां तुमसे एक पर्सनल बात करने आया हूं, प्रियंक ने भौहें उठाते हुए रहस्यमयी अंदाज में कहा। ये मेरा घर नहीं है जो तुम पर्सनल बातें करने के लिए आए हो, ये काम करने की जगह है। कुछ काम की बात है तो करो, वरना मेरे पास फ्री टाइम नहीं है, आर्यांश हल्के गुस्से में बोला। उसे प्रियंक जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसके गुस्सा करने के बाद भी प्रियंक पर कोई असर नहीं हुआ। वो बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बोला, तुम इतना गुस्से में क्यों रहते हो? अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी उदास क्यों रहती है। तुम्हारे खराब बिहेवियर की वजह से बेचारी का ये हाल है। प्रियंक के मुंह से दीवा का जिक्र सुनकर आर्यांश के चेहरे के भाव गंभीर हो गए थे। वो अपनी जगह से उठते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? प्रियंक अभी भी बैठा हुआ था। उसने अपने पैर पर दूसरा पैर रखा और कहा, मैं अभी बाहर से ही आ रहा था, मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिली थी, रोड पर लावारिस की तरह चल रही थी, ये तो मैंने उसे बचा लिया, वरना आज तो उसका ऊपर का टिकट कटने वाला था। वैसे क्या हुआ होगा जो वो इस तरह रोते हुए खुद की जान देने चली गई थी? आर्यांश प्रियंक के सामने अपने और दीवा के रिश्ते को जाहिर नहीं करना चाहता था। उसने अनजान बनते हुए कहा, मेरी बहुत सी गर्लफ्रेंड है, मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो। हालांकि अंदर ही अंदर उसका दिल बेचैन हो रहा था कि आखिर दीवा रो क्यों रही थी कि वो खुद की जान तक देने चली गई थी। अच्छा ऐसा है, मुझे नहीं पता था तुम्हारी बहुत सी गर्लफ्रेंड है, अगर डॉक्टर गोयनका को पता चला तो बेचारी का दिल टूट जाएगा, प्रियंक ने जवाब दिया। आर्यांश का मन किया कि वो प्रियंक का गला दबा दे। वो गुस्से में उसकी तरफ खा जाने वाली निगाहों से देख रहा था। प्रियंक को उसे इस तरह चिढ़ा हुआ देखकर बहुत मजा आता था। उसे आर्यांश का गुस्सा बहुत पसंद था।
प्रियंक को लगा दीवा का नाम लेने पर आर्यांश कुछ रिएक्ट करेगा, लेकिन आर्यांश ने सर हिलाया और कहा, काम के टाइम तुम बाहर घूम रहे थे, मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को फिर से एडिट करना होगा। आर्यांश ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और जाकर फिर से डेस्क पर बैठ गया था। उसकी बात सुनकर प्रियंक ने बेपरवाही से सिर हिलाया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर उसकी सैलरी कट भी होती है, कौन सी उसे पैसों की जरूरत थी। प्रियंक उसके बाद वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आर्यांश का काम में बिल्कुल मन नहीं लगा। उसने दीवा को मैसेज भी किए थे, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। वहीं दूसरी तरफ दीवा हॉस्पिटल पहुंची तब एक इमरजेंसी केस आया हुआ था, ऊपर से सर्जरी भी करनी थी तो वो उन सब में बिजी हो गई थी। उन सब से फ्री होने के बाद शाम के वक्त दीवा ने अपना मोबाइल चेक किया। उसने सबसे पहले कॉल देखे तो उसमें समय का कॉल था। दीवा ने तुरंत उसे कॉल बैक किया। तुम कहाँ थी दीवा, कॉल रिसीव नहीं कर रही थी? समय ने कैरिंग वे में पूछा। बस हॉस्पिटल में ही बिजी थी, इमरजेंसी सर्जरी में लग गई थी। तुम बताओ सब ठीक है ना, दीवा ने अपना सिर पकड़कर कहा। उसके सर में भयंकर दर्द हो रहा था। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया था कि जन्नत पकड़ी गई है और उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। साथ ही प्रिंसिपल सर ने सबको स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि अगर किसी के मोबाइल में जन्नत से जुड़ा हुआ कुछ भी मिला तो अच्छा नहीं होगा, समय ने खुश होकर बताया। दीवा इन सब के बारे में पहले से ही जानती थी और ये सब आर्यांश ने किया था। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, दो दिन बाद मैं इनाया से मिलने के लिए स्कूल आऊंगी, तब तुमसे भी मिलूंगी। समय ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर कॉल कट कर दिया। उसके बाद दीवा ने अपना मोबाइल डेटा ऑन किया तो उसे आर्यांश के काफी सारे मैसेज आए हुए थे। वो बार बार यही पूछ रहा था कि तुम कहाँ हो। दीवा ने तुरंत उसे जवाब देते हुए लिखा, इमरजेंसी में बिजी थी। वो नहीं चाहती थी कि आर्यांश जवाब ना देने की वजह से गुस्सा हो जाए। वहीं शाम के वक्त आर्यांश जल्दी घर पहुंच चुका था और दीवा के आने का इंतजार कर रहा था। जब उसे दीवा का मैसेज मिला तो उसने तुरंत मैसेज करते हुए लिखा, ठीक है फिर जल्दी घर आओ। दीवा ने उसे घर आने का मैसेज कर दिया था। वो अपना सामान समेटने के बाद घर पर पहुंची। वो एक आलीशान घर था जो अब दीवा के आने पर सच में घर की तरह लगने लगा था, वरना वहां पर बिल्कुल खामोशी छाई हुई रहती थी। अंदर आते ही दीवा ने अपना बैग रखा, शूज उतारे और फिर लिविंग रूम की तरफ बढ़ने लगी। सामने आर्यांश हाथ बांधे हुए उसी की तरफ देख रहा था। दीवा की छोटी ग्रे आंखें रोने की वजह से सूज चुकी थी और उसे देखकर अचानक आर्यांश जोर से हंसने लगा। उसकी इस हरकत पर दीवा ने उसकी तरफ घूर कर देखा। आर्यांश कभी खुलकर नहीं हंसता था, हाँ जब उसे दीवा का मजाक बनाना होता था तब वो कई बार बिल्कुल अलग हो जाता था, और आज भी ऐसा ही हुआ था। दीवा का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो सिंपथी देने के बजाय उस पर हंस रहा था। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही। देखते हैं आर्यांश दीवा को कैसे मनाता है या प्यार से सब कुछ कैसे सुलझाता है।